From the conference center at Temple
Square. Salt Lake Circus, Temple Square, se esimerkiksi 182nd verse 6 Mahasammelan he.
General officers of the church.
Jagar ke sadasya aur dakari duniya ke sabhi bhagon se aaye hai. Taki apne girjagar netaon se salah aur aadesh prapt kar sake.
This broadcast
is from distribution dwara is prasaran ko janta seva ke roop mein prati ki gayi hai.
Recording, transcription or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F.
Uchtdorf is girjagar ke pradham adhyakshta ke dusre salahkar hai is sabha ko sanchalan karenge. भाइयों और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं इस यीशु मसीह के गिरजाघर के अंतिम दिनों के संतों के 182nd वार्षिक महासम्मेलन के पहले बैठक में और खास तौर पर स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों को जो इस सम्मेलन केंद्र और विश्वभर से भाग ले रहे हैं. प्रधान मॉनसन जो सम्मेलन का अध्यक्ष कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूँ. हम उन महाअधिकारियों और महासहायक अधीक्षकों को आभार प्रकट करते हैं जो सम्मेलन में उपस्थित है. इस सभा के संगीत टेबनेकल गायक मंडली द्वारा रहे मैक वुलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में, जिनके साथ एंड्रू अंसवर्थ और क्लेक क्रिस्टेंसन ओगन पर रहेंगे. गायक मंडली ने इस बैठक का शुरुआत हाई ऑन द माउंटेन टॉप गाकर किया और अब हमारे लिए गाएंगे प्रेज द लॉर्ड with heart and voice. Shuruat Prarthna Fir Elder B. John B. Dixon, jo 70 ke hain, dwara bola jayenge.
Our kind and eternal Heavenly Father.
हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपके सामने आकर इस सेशन के लिए जो हम इकट्ठा हुए हैं गिरजाघर के, हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए जो हमारे लिए दिया है, और आपके सुसमाचार के लिए जो आपने वापस हमारे पास लाए हैं अपने उद्धारकर्ताओं के और हम प्रेसिडेंट थॉमस एस मैनसन और उसके काउंसलर और जो और सारे अपोस्टल्स हैं उनके लिए आभारी है और जो हमसे बातें करेंगे इस सेशन में और सभी आग सेशन जो हम सुनेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सुने और समझे और सीखे और जो हम सीखे उसे अपनी ज़िंदगी में लाए और ये जो सेशन है हम आपके नाम पे लाते हैं, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन।
It will now be our
अब हमारा सौभाग्य होगा हमारे भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मॉन्सन उनके भाषण के बाद गायक मंडली गाएगी You can make the pathway bright। हम फिर प्रधान बॉयड के पैकर का भाषण सुनेंगे जो 12 देवदूतों के परिषद के प्रधान है। उनके बाद बहन शेरल एस्पलिन प्राथमिक की महाअध्यक्षता में दूसरे सलाहकार भाषण देगी। एल्डर डॉलन एल ऑलस्ट्रम 70 के अध्यक्षता के फिर हमें भाषण देंगे। प्रेजेंट मॉन्सन
On one occasion, I saw a speaker.
एक समय मैंने एक आदमी को सुना, हमें बताना चाहते थे, फिर वो जब चला गया, मैं देखा इधर उधर और सभी को देखा और फिर वहां से चला गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा आज। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम फिर यहाँ इकट्ठा है गिरजाघर के महासम्मेलन में। मैं आपका स्वागत करता हूँ और अपना प्रेम प्रकट करता हूँ आपके लिए। हम हर 6 महीने मिलते हैं एक दूसरे को हिम्मत देने के, प्रोत्साहन देने, सहानुभूति देने, विश्वास को मजबूत करने के लिए। हम यहाँ सीखने आए हैं। जो लोग जीवन के सवालों और चेतावनियों के जवाब ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग निराशा या नुकसान में संघर्ष कर रहे हैं, हर एक को रोशनी और प्रोत्साहन और सहानुभूति मिल सकती है, प्रभु की आत्मा महसूस होगी। अगर हम तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव करने हैं, शायद तुम वहां ढूंढ लोगे और हिम्मत भी ऐसा करने के लिए जब तुम बोले जाने वाले प्रेरणा भरे शब्दों को सुनेंगे। हम में से हर एक अपने इरादा को ठोस करें। आओ हम बुराई को विरोध करें जहां भी उसे पाएं। हमें कितना आशीर्वाद मिला है कि हम धरती पर आए समय इस समय में दुनिया के इतिहास के एक बढ़िया समय। हम सब एक ही जगह नहीं हो सकते, मगर हम में वो काबिलियत है कि हम सम्मेलन के प्रसारण को दूरदर्शन, रेडियो केबल, सैटेलाइट प्रसारण और इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों के अचंभों से भी भाग ले सकते हैं। हम एक होकर मिलते हैं, कई भाषाओं बोलते हैं, कई अलग देशों में रहते हैं, मगर सभी एक विश्वास है और एक सिद्धांत है, एक लक्ष्य के लिए। एक छोटे से शुरुआत से 182 वर्ष पहले हमारी उपस्थिति अब दुनिया भर में महसूस की जा रही है। ये महान लक्ष्य जिसमें हम भाग ले रहे हैं बढ़ता जाएगा। इस दौरान कई जीवन को बदलते और आशीष देते हुए इस दुनिया का कोई वजह, कोई रुकावट परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकती, भले ही जो होने वाली है। तुम भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के भविष्यवाणी को याद करो, कोई भी अपारवर्ता हाथ इस कार्य को बढ़ने से नहीं रोक सकता। अत्याचार होगा, गिरोह इकट्ठा होंगे, सेनाएं हमारा जमा होंगे, झूठी निंदा बदनाम करेगी, मगर परमेश्वर की सच्चाई, निर्दयता, उदारता और आजादी से आगे बढ़ेगा जब तक वो हर मुल्क में ना पहुंच सके, सभी चित्रा में और देश में और सभी लोग सुन सके, जब परमेश्वर की लक्ष्य पूरे होंगे और महायहोवा कहेगा समाप्त हो गया। आज दुनिया में बहुत कुछ हो है जो कठिन और चैतन्यपूर्ण है मेरे भाई और बहनों, मगर बहुत कुछ यहाँ अच्छा है और प्रेरणा भी है। जैसे हम अपने तहरावे विश्वास के लेख में कहते हैं, अगर कोई चीज़ शुद्ध सुंदर या अच्छे जानकारी का, हम इन सब चीज़ों को ढूंढते हैं। हम सदा ऐसा करें। मैं आपको आपके विश्वास और सुसमाचार के प्रति श्रद्धा के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें एक दूसरे की प्रति प्रेम और परवाह के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको अपनी वार्ड और शिक्षा और स्टेक और जिला में सेवा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही सेवा प्रभु को उनके कई लक्ष्य को धरती पर पूरा करने के का मौका देती है। मैं हमेशा आपको धन्यवाद देता हूँ दया के लिए जहाँ मैं जाता हूँ। मैं उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। मैंने वो प्रार्थनाओं महसूस की है और बहुत आभारी हूँ उनके लिए। अब मेरे भाई और बहनों, हम शिक्षा और प्रेरणा के लिए आए हैं। कई संदेशों को अगले दो दिनों में बतलाया जाएगा। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि वो पुरुष और महिलाएं जो आपसे बातें करेंगे ने स्वर्ग का सहायता लिया है और निर्देशन भी इन संदेशों को तैयार करने के लिए। वो जो कहेंगे उसके लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी। हमारे स्वर्ग पिता हमें और हमारे जरूरतों का जानता है। हमें अंदर उनकी आत्मा को महसूस करना है इस कॉन्फ्रेंस में। ये मेरा हार्दिक प्रार्थना है प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन। There's sunshine in your heart today.
years ago on a cold night on the train in a train station in Japan. I heard a tap on the window of my sleeper car. There stood a freezing boy wearing a ragged shirt with a dirty rag tied about the swollen jaw. His head was covered with scabies. He held a rusty tin can.
Uske sar mein khujli ghav the. Uske haath mein ek मूर्छा टीन का डब्बा और एक चमचा था जो अंध भिखारी होने चिन्ह था। मैं उसे पैसा देने लिए दरवाज़ा खोला खसर रहा था कि रेलगाड़ी आगे बढ़ गई। मैं उसे भूखे छोटे बालक को कभी नहीं भूल पाऊँगा, ना तो मैं भूल पाऊँगा कि मैं कितना बुरा महसूस किया था जब रेलगाड़ी गया। उस कुछ वर्ष बाद कुस्को शहर में जो पेरू के ऊंचे आदेश पार्ट में थे एल्डाई थियोडोटेडल और मैंने एक पतले लंबे कमरे में प्रभु भोज सभा के एक सड़क की ओर खोलते था। रात्रि का समय था और बहुत ठंड था। जब एल्डाटेडल भाषण दे रहा था एक छोटा बालक शायद 4 वर्ष का था दरवाजा पर रहा। उस एक पतली हुई कमीज पहनी हुई थी जाता था। हमारे भाई के एक छोटे मेज था जिस पे भोज के लिए रोटी रखी थी। इस भूखे आनंद बच्चे ने रोटी देखा और धीरे धीरे दीवार के बगल से उसके बढ़ा। वह मेज तक पहुँचे कि वाला था कि महिला ने उसे देख लिया। अपने सिर को इनकार में हिलाया उसने बाहर ठंड में भेज दिया। मैं अपने आप में दुखी हुआ। थोड़ी देर में वो लड़का वापस आया, फिर धीरे के बगल से आया रोटी को देखता और मुझे। जब वह वहाँ पहुँचा जहाँ महिला उसके देख सकती थी, मैंने अपने हाथ में पहला और वो दौड़ता हुआ पास आया। मैंने उसे अपने गोद में लिया। फिर जैसे कुछ प्रार्थक हुआ मैंने उसे एल्डर टाइटल के कुर्सी पर बैठाया। अंतिम प्रार्थना के बाद में वो पूरा बालक रात्रि में कहीं भाग गया और मैं दुखी हुआ। जब मैं घर लौटा मैंने प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल से अपना अनुभव बताया। उसने बहुत अच्छा लगा और उसने मुझसे कहा, तुम्हें अपने गोद में एक पूरा देश बैठाया था। उसने मुझे ये बहुत बार कहा। वो अनुभव तुम्हारे लिए इतना अनपूर्ण होगा कि तुम अपने नहीं जवान सकते हो। मैंने जब लैटिन अमेरिका के देश में 100 ज़्यादा मैंने उस छोटे बालक को देखा है। अब मैं जानता हूँ प्रधान किम्बल के बोल का मतलब। मैंने सॉल्ट लेक सिटी शहर के सड़कों के एक कपड़े में लगते हुए मिला। वो एक ठंड बर्फ के मौसम क्या रहा था। हम एक होटल में बड़ा दिन के भोजन के बाद जा रहे थे सड़क पर से अंत मचाते हुए। सभी को घर पर ठंड से बचे रहना था समय। एक लड़का के पास खुद नहीं था। वो सबसे ज़्यादा फड़क रहा था और ठंडी हवा से भर के लिए। रात को जब मैंने अपने ऊपर कम्बल चढ़ा मैंने एक प्रार्थना किया कि उनके लिए जिनके पास घर जाने के लिए कमरा रहे वाला घाट नहीं है घर पर। मैंने उसका जापान में काम करता था जब 2 विश्व युद्ध खत्म हुआ। शहर तो देर था गया था। असदों पर इटिन महिलाएं और भूम बम की घटे थे। भले कि काफ़ी पेड़ थके गए थे कुछ भी ढूंढते हुए। एक छोटी लड़की सैंडल पहने हुए और एक पति रंगीली किम पेनी पेली पेड़ के पत्तियों का कर रही थी। उसके बच्ची पर वातावरण का कुछ भी असर नहीं पड़ा। सिर्फ वो नए पत्तियों ढूंढती थी जहाँ करने के लिए। उसने अपने बच्ची हुई दुनिया को सुधारन पा लिया था। मोमर ने सिखलाया कि छोटे बच्चे मसीह में जीवित है और उन्हें पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। 19 साल के करीब 2 प्रचारक दक्षिण यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधानों पर प्रचार कर रहे थे। एक दिन एक पहाड़ के छोटी से उन्होंने लोगों के नीचे के खुले जगह में इकट्ठा हुआ देखा।
इन प्रचारकों को अक्सर इतने लोगों के प्रधान की माफ थी, इसके लिए वो खुले जगह थक गए थे। एक छोटा बच्चा डूब गया था और वहाँ एक अंतिम संस्कार होना था। उसके माता पिता ने पादरी को बुलाया और अपने बेटे के कार्यक्रम की कुछ बात कहने को प्रचारक सुनने लगे कि जब दौरा किया हुआ, उसने उन्हें पूरी तरह डांटा छोटे बच्चे को बपतिस्मा लेने के कारण। उन्होंने टाल था कि बपतिस्मा आना कार्य के लिए और अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सीधा बताया कि उनका छोटा बच्चा नरक में गया है, बेटे के आनंद दशा उनका कसूर था, उनके उसकी आनंद पिता के लिए कसूरवार था। भाषण का खबर को ट्रुपन के बाद एल्डरों मिशनरियों माता पिता के पास गया। उन्होंने माता से बताया, हम प्रभु के सेवक हैं और हम तुम्हारे लिए एक संदेश लाए हैं। रोते हुए माता ने पिता सुनने लगा, एल्डरों लेवरेशन पुस्तक के पढ़ने लगे और अपना गवाही पेशा किया पश्चाताप की चाबियां की बारे में जो जीवित और मृत्यु दिनों के लिए है। मुझे उस पादरी के कुछ दया आया, वो तो अपने पास में सब कुछ कर रहा था रोशनी और ज्ञान के मुताबिक, मगर उस भी कुछ बतलाना चाहिए था। वो है सुसमाचार की पूर्णता। वो एल्डर्स सहानुभूमित सिखलाया प्रभु के सेवक यीशु मसीह के सुसमाचार के अधिकारी पादरी के रूप में आया थे। जिन बच्चों के बारे में मैंने बात की है, हमारे स्वर्ग के पिता के बच्चे हैं। बच्चे प्रभु की दिए घरों घर है। दुनिया के वो पुरुष जीवन अपने तकलीफ के लिए है। बरसों पहले एक महिला ने मुझे बताया कि एक कॉलेज वेस्टी होने के समय उसने एक भारी गलती की थी अपने प्रेमी के साथ। उसने गर्भवती करवाया था। समय आने पर वे डिग्री प्राप्त किया और शादी कर लिए और उनके कई बच्चे हुए। उसने मुझे बताया कि वो कितनी दुखी होती है अपने परिवार को अब देखकर, उसके सुंदर बच्चे, और अपने मन के एक खाली जगह देखता है जहां वह पहला बच्चा होना चाहिए। अगर ये दंपति प्रश्चित हो समझते हैं अपने वो जानने की वो अनुभव और उसे छुड़े पिता मिट सकते हैं। कोई पैदा हमेशा के लिए नहीं होता, आसान नहीं है, मगर जीवन को आसान या ऐसा नहीं होना है। पश्चाताप और सदा की आशा जो माफी के मिलती है हमेशा कोशिश के लायक रहेगा। एक और जवान दंपति ने रोते हुए मुझे बतलाया कि वो अपने अभी अभी डॉक्टर के पास से आ रहे हैं, जहां उन्हें बतलाया गया कि वे बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। वो ये जानकर से दुखी थे। वो अचंभित हुए जब मैंने कहा कि ये तो उनके सौभाग्य है। वो सोचते कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। मैंने कहा कि उसके स्थिति उनके आए दंपतियों से बेहतर है जो माता पिता सकते हैं, मगर वो जिम्मेदारी को ढूंढे और उसे पाते और लंबे रखे। मैंने उनसे कहा, लेकिन तुम बच्चे चाहते हो थे और इसके लिए वजह से तुम्हें इस जीवन में और इसके बाद सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हें आत्मिक शक्ति मिलेगी। तुम और आगे रहोगे क्योंकि तुम बच्चे चाहते थे और तुम्हें नहीं हुआ, उनके लोगों के तुलना में जिनको बच्चे हो सकते थे लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा किए। अभी भी कुछ दंपति अविवाहित रहते हैं, उनके बच्चे नहीं हो सकते। कुछ उन काबू के बाहर है क्योंकि अकेले अविवाहित माता या पिता के रूप में बच्चे पाल रहे हैं। ये आशक्ति पाल है अनंतता की योजना का अनुसार। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह के से आशा रहते हैं, तुम हम सब महसूस से अभागे हैं। गिरजाघर माता पिता होने के महान खोज ये है कि हम अपने बच्चे के वैश्वातक के बारे में कहीं ज्यादा शक्ति जितना अपने माता पिता से नहीं सीखें। हम सच्चाई को ईसाई आसिया के भविष्यवाणी में पहचानते हैं जो कैसा एक छोटा बालक उनके अगुवाई करेगा। और यरूशलेम में यीशु मसीह ने एक बालक के पास बुलाया और उनके बीच में खड़ा किया, अगर कहा मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जब तुम ना पैरों और बालकों के सामना ना बनो तुम स्वर्ग के राज में नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और मैं उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य आशाओं की है। और वो उपहार हाथ रखा वहां से चला गया। हम मामन धर्मशास्त्र में यीशु मसीह के नए दुनिया में द्वारा करने के पैदा है। उसने लोगों को चंगा किया और आशीर्वाद दिया इस चंगे छोटे बच्चे को। उसने फिर लोगों को घुटने पर होने को कहा। उसके आपस बच्चों को लेकर उद्धारकर्ता ने भी घुटने पर होकर स्वर्ग के पिता से एक प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद उद्धारकर्ता ने पढ़ा, उसने उनके एक एक छोटे बच्चों को लेकर आशीर्वाद दिया और पिता से उनके लिए प्रार्थना किया। और जब उसने ये कर लिया तब फिर से रोया। मैं बच्चों के प्रति उद्धारकर्ता के एहसास को समझ सकता हूँ। हमें उनके उदाहरण से बहुत कुछ सीखना है और छोटे बच्चों को इसलिए प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना और उन्हें सिखलाना। मैं 11 बच्चों के परिवार में नंबर 10 पर था। जितना मैं जानता हूँ ना तो मेरा पिता ना मेरे माता ने गिरजाघर में कोई बड़ी नियुक्ति में सेवा किया। हमारे माता पिता वफादार से अपने सबसे जरूरी नियुक्ति को पूरा कर माता पिता होना का। हमारे पिता ने हमारे घर की अगुवाई धार्मिकता में किया, कभी गुस्सा या डर से नहीं। और हमारा पिता शक्तिशाली उधार हमारा माता की कोमल शहला से होती थी। सुसमाचार के एक शक्तिशाली प्रभाव है पैका परिवार के सभी सदस्यों में और बड़ी ही पीढ़ियों तक। मैं आशा करता हूं कि मैं भी अपने पिता जैसा अच्छा आदमी घोषित किया जाऊंगा। मुझे स्वर्ग की पिता के वो शब्द सुनने पहले अच्छा किया। मेरे आशा है कि मैं वो अपने धरती वाले पिता से सुनूं। कई बार मैंने सोचा है क्यों मुझे एक देव की नियुक्ति मिली है, फिर एक 12 दूतों की परिशक्ति प्रदान की, जबकि मैं ऐसा घर का था जहां पिता काम सक्रिय खेलता। मैं 12 के एक ही सदस्य नहीं होना जिसका मेरा जैसा घर था। अंत में मैंने देखा कि समझा कि शायद ये इसी परिस्थिति के कारण मुझे नियुक्ति किया गया था। और मैं समझ गया क्योंकि जब हम गिरजाघर में करते हैं मैं हमें अगुवाई करना होता है कि नेता की तरह, ताकि माता पिता सभी तक। कभी कई बातें हैं यीशु मसीह के समाचार को जिसमें बारे में जो हम हाजिरी के ज्यादा है। अक्सर कोई मेरे पास आता है, कहता है प्रधान पेकर अच्छा नहीं होता है। मैं उन्हें ज्यादातर रोक देता हूँ, कहता हूँ नहीं कि मुझे शक है कि जो कहा जाना वाला कि कोई नहीं गतिविधि या कार्यक्रम है जो परिवार पर समय और पैसा का बोझ डालेगा। परिवार का समय पवित्र समय है और उसकी रक्षा करनी चाहिए और आदर भी। अपने सदस्य से अगर कहते हैं कि वो अपने परिवारों के प्रति सम्मान दिखलाना। हमारे शादी के बाद मेरे पत्नी और मैं ने निश्चय किया कि उन बच्चे के अपने आप जो हमें सामाग्य उनके जिम्मेदारी से पालन और पोषण करेंगे। समय आने पर उनके अपने खुद के परिवार बनाया है। हमारे विविधी जीवन में दो बार हमारे छोटे बेटे के जन्म पर डॉक्टर ने कहा है, मैं नहीं सोचता तुम इसे रख पाओगे। दोनों बार हमने तय किया कि हम अपने जीवन दे देंगे अगर हमारा बेटा अपना जीवन रख सकेगा। ये कहते हुए हमने याद आए कि ऐसे समारण हमारे स्वर्ग के पिता के सम्मान जैसा है, एहसास की भावना को लेकर कितना उचित विचार है। अब हमारे जीवन के अंतिम वर्षों में बहन पेकर और मैं समझते हैं कि और गवाही देते हैं कि परिवार हमेशा के लिए हो सकता है जब हम आज्ञाओं को पालन करेंगे और पूरी तरह से सुसमाचार जिएंगे। हम सुरक्षित रहेंगे और आशीष मिलेंगे हमारे बच्चों और नवतों और आप हमारे नवतों को। हमारे प्रार्थना हमारे हर हुआ है परिवार वो समय दिखाएगा और अनमोल छोटे बच्चों को। पिता माताओं, अगली बार तुम एक नए जन्म शिशुओं को अपने हाथ में लो, तुम्हें अंतर्दृष्टि मिलेगी जीवन की रक्षा और लक्ष्य का। तुम बेहतर समझ पाओगे क्यों गिरजाघर इस तरह है और क्यों परिवार समय और अनंतता में जरूरी संस्था है। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
Is a plan for families. And pray the Lord that the families of the church will be blessed, parents and children, that this work can roll forth as the Father intends. And bear that witness.
Witness in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
As years pass, many details.
जैसे-जैसे साल गुजरते हैं, मेरी जिंदगी में बीते हुए लम्हे धीरे धीरे ढुंढलाती हो रही है, मगर कुछ लम्हों को मुझे अभी भी याद है, जैसे हमारे हर एक बच्चों का जन्म। स्वर्ग कितना नजदीक लगा और अगर मैंने कोशिश किया, मैं वही शांत और आश्चर्य के महसूस कर सकती हूँ जो मैंने हर एक बच्चों को अपने हाथों में लेते समय अनुभव किया था। हमारे बच्चे प्रभु के दिए हुए संपत्ति है, वो सभी को जानता है और उन्हें अपने संपूर्ण प्रेम के साथ प्यार करता है। कितना पवित्र जिम्मेदारी स्वर्ग पिता ने हमें दिया कि हम माता पिता उनके साथ मिलकर उसके चुने हुए आत्माओं को वो बनने में मदद करें जो वो जानता है कि वो बन सकते हैं। ये महान सौभाग्य हमारे बच्चों को बड़ा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम अकेले कर सकते हैं प्रभु के मदद के बिना। वो ही जानता है कि हमारे बच्चों को क्या जानना जरूरी है, क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए उनके पास वापस जाने के लिए। वो माता और पिता को धर्मशास्त्र, उनके भविष्यवक्ताओं और पवित्र आत्मा के द्वारा खास आदेश और मार्गदर्शन देता है। अंतिम दिनों के प्रकट होने के एक कार्य में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा प्रभु माताओं पिताओं के को आदेश देता है कि वो अपने बच्चों को पश्चाताप के सिद्धांत को समझाए, मसीह में विश्वास, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के उपहार को सिखाए। देखो कि प्रभु यह नहीं कहता है कि हमें सिद्धांत को सिर्फ सिखलाना है, उसका आदेश है कि हम अपने बच्चों को सिद्धांत को समझाने के लिए सिखलाए। साम्स में हम पढ़ते हैं कि मुझे समझ दे तब मैं तेरी अवस्था को पकड़े रहूंगा और अपने पूरे मन से उस पर चलूंगा। अपने बच्चों को समझना सिखलाना सिर्फ आदेश देने से ज्यादा जरूरी है। यह हमारे बच्चों की मदद करता है सिद्धांत को उनके दिलों तक पहुंचाने में उस तरीके से कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। नीफाई ने सिखलाया कि पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो सच्चाई को मानव के बच्चों के हृदय के अंदर तक पहुंचाए। माता पिता के रूप में हमारे कार्य है कि ऐसी स्थिति बनाए कि जहां हमारे बच्चे आत्मा के प्रभाव को महसूस कर सके और उनकी मदद करे ये जानने में कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे वो फोन कॉल याद है जो मुझे सालों पहले अपनी बेटी मिशेल से प्राप्त हुई थी। मधुरता के साथ उसने कहा, माँ, मुझे एशली के साथ बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है। एशली उसकी बेटी है जो उस समय 7 साल की थी। मिशेल ने उस सुबह को एशली और 3 साल उम्र के एंड्रू के झगड़े के विषय में बतलाया। एक देता नहीं था और दूसरा मारता था। उनको समझाने के बाद मिशेल शिशु को देखने चली गई। तुरंत एशली भागती हुई अंदर आई, गुस्से में कि उसके एंड्रू उससे बातता नहीं था। मिशेल ने एशली को याद दिलाया कि घरेलू शाम सभा में उन्होंने ये वादा किया था कि वो एक दूसरे के साथ और ज्यादा दयालु रहेंगे। उसने एशली से पूछा कि वो प्रार्थना करनी चाहती थी, स्वर्ग पिता से मदद चाहती थी, मगर एशली अभी भी बहुत गुस्से में थी, कहा नहीं। जब पूछा गया कि क्या वो विश्वास करती है कि स्वर्ग पिता उसकी प्रार्थना को सुनेगा, एशली ने कहा कि वो नहीं जानती। मिशेल ने सुझाव दिया कि एशली स्वर्ग पिता से मदद मांग कि एंड्रू उससे भी बांटे और दयालु बने में मदद करे। ये विचार कि स्वर्ग पिता उसके छोटे भाई को मदद करेगा, एशली ने स्वभाव की बदल दी और उसने प्रार्थना की। जब वो उससे अपने आप को दयालु होने के लिए मदद मांग रही थी, वो रोने लगी। एशली ने अपने प्रार्थना को खत्म किया और अपने माँ के गले लगी। मिशेल ने उससे पूछा कि क्या वो क्यों रो रही है। एशली ने कहा कि वो नहीं जानती। उसकी माँ ने कहा, शायद मैं जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। क्या तुम अंदर से अच्छा महसूस करती हो? एशली ने सर हिलाया। माँ बोली, ये आत्मा की मदद है कि तुम इस तरह से महसूस कर रही हो। यह स्वर्ग पिता का तरीका है तुम्हें बतलाने की कि वो तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारी मदद करेगा। कभी कभी हमारे बच्चों को सिद्धांत समझाने के सबसे बड़ा तरीका है कि उसे सिखलाए जो वो अभी अनुभव कर रहे हैं इस समय। ये समय सरल और अनियोजित और परिवार के जिंदगी में होता रहता है। वो जल्द आते और जाते हैं, तो हमें सचेत रहना चाहिए और उस समय को जानने जब हमारे बच्चे हमारे पास अपने सवाल या चिंता ले आते, जब उनके पास भाई बहन और दोस्त के साथ कठिनाई होती है, जब उन्हें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, जब वो गलती करती है, ये जब वही वो किसी निर्णय को बनाना चाहता है। अगर तुम तैयार रहते हैं और इन स्थितियों में आत्मा से मार्गदर्शन लेते हैं, हमारे बच्चों को ये ज्यादा प्रभाव और समझ प्राप्त होगी उसे सिखलाने में। इतनी ही जरूरी है सिखलाने के पल जो आते हैं जब हम पारिवारिक के प्रार्थना, पारिवारिक के साथ धर्म सिद्धांत को पढ़ने, परिवार घरेलू शाम सभा और दूसरे पारिवारिक गतिविधियों करते हैं। उनके बच्चों के 8 वर्ष के होने से मैंने 2 महीने पहले एक पिता हर हफ्ते समय निकालता कि वो उन्हें बपतिस्मा के लिए तैयार करे। उसके पुत्री ने कहा कि जब उसकी बारी थी, उसने एक जर्नल दिया और वो साथ बैठे थे, सिर्फ वो दोनों, और वार्तालाप किया और साथ में सुसमाचार के सिद्धांत को पढ़े। उसने उसे चित्र बनाने को कहा। उसमें मरणशील जीवन से पूर्व का इस धरती की जिंदगी और वो हर एक कदम जो उसे स्वर्ग पिता के पास दोबारा जाने में मदद कर सकता है दिखलाया। उसने अपने हर एक मुक्ति की योजना के कदम के गवाही को बतलाया जब उसने उसे सिखलाया। पुत्री ने बड़ी होने के बाद अपने अनुभव को याद किया। उसने कहा, मैं अपने पिता के उस प्यार के अनुभव को कभी नहीं भूलूंगी जो मैंने उसके साथ गुजारे हुए समय में महसूस किया था। समझने की शिक्षा के लिए पक्का और निरंतर शक्ति चाहिए। इसके लिए नियम और उदाहरण से सीखना जरूरी है और उस खास तौर से हमारे बच्चों की मदद करने के लिए जो वो सिखाते हैं। प्रधान ली ने सिखलाया कि बिना सुसमाचार के सिद्धांत को कार्य में अनुभव किया कितना ज्यादा कठिन है उस सिद्धांत को विश्वास करने में। मैंने सबसे पहले प्रार्थना करना अपने परिवार से के साथ घुटनों में प्रार्थना करने से सीखा। जब मैं अपने माता पिता को प्रार्थना करते सुना, उसमें से शब्दों को सीखा और जब उन्होंने मुझे अपने पहले प्रार्थना को करने की मदद किया था, मैंने सीखा कि मैं स्वर्ग पिता से बातें कर सकती थी और मार्गदर्शन को मांग सकती थी। रात के सोने सोने पर जाने से खाट पर जाने से पहले हम कमरे में सात घुटने पर होकर दिन को पारिवारिक प्रार्थना से खत्म करते थे। भले ही मैं प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ नहीं समझती थी उस समय, पर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था जो आज मेरे साथ है। मैं अभी भी सीखती हूँ और मेरी प्रार्थना की शक्ति अभी भी बढ़ रही है। एल्डर जेफरी आर और हॉलैंड ने कहा, हम सब समझते हैं कि सुसमाचार की संदेश उस पर निर्भर है कि किस तरह सिखलाया गया और फिर समझाया गया और फिर उस तरह किया गया कि उसके खुशी के वादे को हासिल कर सके। सुसमाचार के सिद्धांत को पूरी तरह से सीखने के लिए पूरी जिंदगी के समय की क्रिया है और आती है, नियम पर नियम, आगे पर आगे, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। जब बच्चे वो करते हैं जो उन्हें सीखा है, उनकी समझ बढ़ती है और जो और सीखने की इच्छा करती है, ज्यादा कार्य और भी महान और बने रहने वाली समझ। हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे सिद्धांत को समझने की शुरुआत करते हैं जब हम उनके स्थितियों और कार्यों को पूरा होते देखते हैं बिना कोई धमकी या इनाम के। जब हमारे बच्चे सुसमाचार के सिद्धांत को समझने को सीखते हैं, वो और ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। वो हमारे पार्विक चुनौती का जवाब का भाग बनते हैं और हमारे घर का वातावरण में सही दान देते हैं और हमारे परिवार के बढ़ती में। हम अपने बच्चों को समझने के लिए सिखलाएंगे जब हम सभी सिखलाए हुए स्थिति का फायदा उठाए हैं। आत्मा को आमंत्रित करो, उदाहरण बनो और उनकी मदद करो वो जीने में जो वो सीखते हैं। जब हम छोटे बच्चे के आंखों में देखते हैं, हम ये गीत याद आते हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरी बहुत जरूरतें हैं, मेरी मदद करना उसके शब्दों को समझने के लिए बहुत देर होने से पहले। मेरे आगे चलो, मुझे मार्गदर्शन दो और मेरे बगल में चलो, मेरी मदद करो रास्ता ढूंढने में, मुझे सबसे जरूरी चीज सिखलाने करने को किसी दिन उसके साथ जीने के लिए। हम ये सब यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन।
मैं यीशु मसीह और यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतानों का एक सुसमाचार को प्यार करता हूँ। कभी कभी हम सुसमाचार और गिरजाघर अदल बदल के इस्तेमाल करते हैं, मगर वे एक समान में नहीं है। वो है फिर भी सुंदरता से जुड़े हुए और हमें दोनों की जरूरत है। सुसमाचार परमेश्वर का सबसे महान योजना है जिसमें हमें उसके बच्चे की तरह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सभी कुछ प्राप्त कर सके जो पिता ने दिया है। इसे आनंद जीवन कहा गया है। परमेश्वर के सही उपहरण में से सबसे महान की कहा जाता है। ये योजना महत्वपूर्ण भाग हमारा धरती किया अनुभव के समय का है, विश्वास को बढ़ने में पश्चाताप के लिए और परमेश्वर के साथ हम समझौता कर ले, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हमारे मरणशील कमजोरियों हमारे जीवन का को बहुत ही मुश्किल कर देगा, क्योंकि वहां पर विरोध सभी चीजों में है और क्योंकि हमें अपने पाप को साफ नहीं कर सकते। इस एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो एलोहिम हमारे सारे आत्माओं से आनंद परमेश्वर है। पिता और पिता ने अपने मुक्ति के योजना को बतलाया वहां पर हमारे बीच एक साथ, जिसने कहा, जिसने अपने आप को पेश किया और उसकी उसे भेजा, उसका नाम ये हुआ था। स्वर्ग पिता के पास से पैदा हुआ दोनों धर्मिकता और शरीर से धरती के मान से जाना हुआ, वह मरणशीलता के पीड़ा और कष्ट को झेला। वहां महान युवा जिहोवा को यीशु भी कहा गया है। यीशु मसीह के द्वारा गिरजाघर को बनाया गया उसके धरती को पर देखरेख के द्वारा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। इसमें पूर्ण समय का विश्वास में प्रभु ने वहां पुनर्स्थापित किया जो एक समय खास भर भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को बतलाते हुए वहां गिरजाघर को बनाने बनाया गया उसके हाथों द्वारा। यीशु मसीह अपने गिरजाघर का मुख्य था और है। यह एक महान गिरजाघर है। उसका संगतों प्रभाव और संपूर्ण सच्ची है कि इज्जत सभी करते हैं, सच्चाई की इज्जत सभी करते हैं जो उसकी सच्चाई को ढूंढ कर समझते हैं। गिरजाघर के पास बच्चों, युवा आदमी और महिलाओं के कार्य करते हैं। उसके पास सुंदर सभाघर है, 18,000 से भी ज़्यादा गिनती में। शानदार मंदिरें हैं, अभी 136 गिनती में और दुनिया भर में है। साथ में 30 जो बढ़ रही है। पूरे समय के प्रचार 56,000 से भी ज़्यादा है, 150 देशों में। दुनिया भर के गिरजाघर का मातव में प्रेम कर का कार्य महान उदाहरण है, हमारे सदस्य के दानशीलता का, हमारा कल्याण का तरीका, हमारे सदस्यों के लिए देखरेख करता है। इस गिरजाघर में हमारे पास निस्वार्थी नेताओं हैं और संतों की संगठन एक दूसरों की सेवा करते हैं। इस गिरजाघर की तरह दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था, हमारे परिवार एक छोटे से मकान में रहते थे जो गिरजाघर के एक महान और ऐतिहासिक सभाघर से जमीन पर था, जो होनोलुलु टैबरनेकल। अब मैं अपने प्रिय मित्र अधिवक्ता बिशप रिक से माफ़ी मांगता हूँ जो गिरजाघर के चीज़ों की देखभाल करते थे। मगर जब मैं लड़का था, मैंने एक से उसके ऊपर चढ़ा और नीचे और उसके एक ज़्यादा से सभी स्थान पर पूरे हुए फूल पे पानी के नीचे से प्रभावशीलती भरे हुए स्टीपल के अंदर से ऊपर तक। हम ताजन की तरह बड़े बैनियन पेड़ के लंबी लकड़ी हुए डाल पर झूला करते थे जो वहाँ पर थे। गिरजाघर हमारे लिए सभी कुछ था। हम कई स्वभाव में गए जितने में आज जाते हैं से भी ज़्यादा। हम बृहस्पतिवार के शाम को प्राथमिक ज्यादा करते थे, सहायक संता सभाएं मंगलवार सुबह को होती थी, युवक के लिए म्यूचुअल बुधवार रात को होते थे, शनिवार को वोट गतिविधियां होती थी, रविवार को आदमी और जवान पुरुष पुरोहितों के सभा में सुबह ज्यादा करते थे, रविवार कक्षा हमारे 12 बजे ज़्यादा करते थे, फिर शाम को प्रभुभोज सभा में लौटते थे। सभा में हम अपने जानते थे, ऐसा लगता था कि हमारे समय की खत्म हो जाता। गिरजाघर के गतिविधि के साथ पूरे रविवार और हफ्ते भर के लगभग सदी में जितना ज़्यादा मैं गिरजाघर से प्रेम करता हूँ, वहाँ उतने युवक के दिन में थे। हम जहाँ कुछ भी है, जब मैं 5 साल का था, एक महासम्मेलन टेम्निकल हुआ था, उसमें डेविड मैके आया हुआ था। मुझे याद नहीं है उस सब कुछ उसने कहा था, मगर कुछ याद है जो मैंने देखा था, महसूस किया था। प्रधान मैके क्रीम रंग का पोशाक पहने हुए थे और था और अपने लहरेदार सफ़ेद बाल के साथ बहुत ही शाही लगते थे। उस द्वीप के धर्म के लेकर उसने लाल फूलों से बना हुआ माला पहना था। जब वह बातें कर रहा था, मैंने कुछ भावुक महसूस किया। मैंने बाद में समझा कि मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया है। हमने अंतिम गीत गाया, कौन प्रभु की ओर है कौन। अब समय है दिखलाने का। हम निर्धर होकर पूछते हैं, कौन प्रभु की ओर है कौन। उन शब्दों को लगभग 2000 लोगों ने गाया मगर मुझे लगा कि वह सवाल मेरे लिए था। कुछ गिरजाघर में आए उसके गतिविधियों को परम लक्ष्य मांगने हुए। वहाँ पर एक खतरा है, यह संभव है कि गिरजाघर में सक्रिय रहो और सुषमाचार में सक्रिय। मुझे बतलाने दो, गिरजाघर में गतिविधि सबसे जरूरी चाहत की लक्ष्य है, फिर भी वह कम है। गिरजाघर में गतिविधि बाहरी लक्षण है हमारी धार्मिक इच्छा का। अगर हम अपने शब्दों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, गिरजाघर के जिम्मेदारियों को लेकर और पूरा करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वहाँ प्रजा देखती है। तुलना में सुषमाचार की चीज़ों कम देखती है और बहुत मुश्किल हो तलनाव में, मगर वे बड़े आनंद आवश्यकता के हैं। उदाहरण में हमारे पास कितना विश्वास है, कितने पश्चतापी हम हैं, धर्मशास्त्र कितने मायने रखता है हमारे जीवन में, वादाओं को हम कितना निभाते हैं। मैं दोहराता हूँ, हमें सुषमाचार और गिरजाघर की ज़रूरत है। सभी सही है, गिरजाघर का मतलब है कि हमारी मदद करे और सुषमाचार को जीने में। हम हमेशा सोचते हैं कि किस तरह हम कोई गिरजाघर में सक्रिय हो सकता है युवा की तरह, और फिर बड़ा होने पर सक्रिय हुए किस तरह एक बड़े पुरुष जो हमारे जया और सेवा कर सकता ना आता है, किस तरह एक इंसान जो एक नेता से दूसरे सदस्य से गुस्से में गिरजाघर आना बंद कर देता है। शायद यह कारण हो सकता है कि वह पूरी तरह से सुषमाचार में नहीं था, आनंद चीजों में। मैं तीन सुषमाचार के मूल को पेश करता हूँ। एक, देवताओं को गहराव से समझना। एक बना हुआ ज्ञान है परमेश्वर, प्यार ईश्वरत्व की तीन सदस्यों के लिए। मां से पिता से प्रार्थना करो, पुत्र के नाम से अपवित्र आत्मा से मार्गदर्शन चाहो। जीसस क्राइस्ट पर, यीशु मसीह पर विश्वास करके, धर्म विधि और वादों पर ध्यान दो। अगर वहां पर दूसरा है, धर्म विधि और वादों पर ध्यान दो। अगर वहां पर कोई जरूरी धर्म विधि है, हमें अपने जीवन में अभी करने को पूरी तरह से तैयार करो और प्राप्त करो। फिर हमें जरूरत है कि हम अपने अनुशासन को बनाएं, अपने वादाओं को पूरा करने के लिए सत्ता का उपहरण प्रभुवोच को पूरी करते से इस्तेमाल करके। हमें हमें से कई उसके साफ करने की शक्ति से हमेशा बदलते नहीं, क्योंकि हम इस पवित्र धर्म विधि को नहीं कम आदर देते हैं। तीसरा, सुषमाचार को गिरजाघर के साथ मिलाओ। सुषमाचार पर ध्यान देते हुए गिरजाघर हमारे जीवन में ज्यादा ना कि कम आशीर्वाद देता है। जब हम हर सभा में ढूंढ कर सीखने की तैयारी में, अध्याय और विश्वास दोनों के साथ, पवित्रता आत्मा हमारे शिक्षक होंगे। अगर हम आते हैं मनोरंजन के लिए, हमें निराशा होंगे। प्रेसिडेंट स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल से एक बार पूछा गया था, तुम क्या करते हो जब तुम्हें कोई प्रभु भोज मजेदार नहीं लगता? उसका जवाब था, मैं नहीं जानता, मैं उस स्थिति में गया ही नहीं। हमारे जीवन में हमें इच्छा करनी चाहिए जो हुआ था प्रभु के आने के बाद नया दुनिया के लोगों के साथ और उसके घर जगह को बनाने के बाद। सुषमाचार में लिखा था, और इसी तरह वो निफाय के लोगों में गया और देश के सभी लोगों में मसीह के सुषमाचार को प्रचार किया, और मसीह के गिरजा में सम्मिलित हुए, और इस तरह उस पीढ़ी को लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रभु चाहता है कि उसके गिरजाघर और सदस्य पूरी तरह उसके सुषमाचार में बदल जाए। ये ही वह सही रास्ता है जो धार्मिक सुरक्षा देती है और खुशहाली हमेशा के लिए लाती है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
The choir and congregation will now join.
Frequently, your sabab, ame, how firm a foundation, ganeme saath denge. Git ke samapti par elder Pauli Koyla ka sathar ke hame baashan denge. Unke baad elder Dylan Chokes, bara devatan ki parishat ke baashan denge. Gayak Mandali fir gayegi, love is spoken here.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I love being with the full-time
missionary. मैं full-time missionaryों के साथ होना पसंद करता हूँ। वो विश्वास, आशा और सच्चा प्यार से भरा है। उन्हें प्रचारक के अनुभव जीवन भर के 18 से 24 महीनों में होते हैं। वे धार्मिक शिक्षकों की तरह आते हैं और गंभीरता से भूख से सिंह के पूरे विवेक की तरह जाते हैं। उन्हें समय आने वाले भी चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनके बार समृद्ध प्रचारक से भी प्यार करता हूँ, जो धीरे धीरे ज्ञान और शांत भरते हैं। वो शक्ति और प्यार के उपहार लाते हैं। युवा और भरे शक्ति की तरह अपने इर्द गिर्द के जवान प्रचारकों के साथ में वो शक्तिशाली, अच्छाई और शक्ति को रहते हैं, जो उनके जीवन में गंभीरता से अच्छा प्रभाव को देते हैं और उनको जो सेवा से प्रभावित होते हैं। अभी जल्द में महीने में मैंने जो 2 महीने में जवान प्रचारों को सुना, जब वे अपने अनुभव को कर दोबारा बतलाते थे, उस विचार सीखले मुझे वो मना हर एक संभति से दिनों के याद दिलाया। उन्होंने पूछा, हम किस तरह मदद कर सकते हैं हर एक को स्वर्ग पिता के विषय में ज्यादा जानने के लिए, हम किस तरह मदद कर सकते हैं उसकी आत्मा को महसूस करने में, हम किस तरह से बतला सकते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं। मैंने सोचा कि मैं उन दोनों जवान आदमी को 3 या 4 सालों के बाद देखना चाहूँगा उनके मिशन को खत्म होने के बाद। मैंने दृश्य में ये उनको अपने आनंद शक्ति के साथ देखा कि एल्डर्स प्रसन्न में सेवा करते हैं, जवान आदमी को शिक्षा देते, अभी उन्हें सच्चा बदलाव करने में। मैंने देखा कि किस तरह से वे प्रचारक के अनुभव दूसरों के प्रसन्न करते हैं। आगे जैसे इस सच्चे चेलों के सैनिक में अपने मिशन से वापस लौट हर धरती के कर देशों में वो गिरजाघर के कार्य को करने में जरूरी कर्मचारक बनते हैं। भविष्यता ले ही मोमन के धर्मशास्त्र से ये उन्हें सवालों को सोचा होना प्रचारक की तरह, जब उन्होंने अपने पुत्रों के लिखे हुए को जवाब दिया था उस मार्गदर्शन की दृष्टि पर। इस प्रकार लेमन और रिमूल ने, जो सबसे बड़े थे, अपने पिता के विरोध आशुतोष प्रकट किए। वे इसलिए शिकायत कर रहे थे क्योंकि जैसे परमेश्वर ने उन्हें बनाया था उसके लीला वे नहीं जानते थे। शायद हमें लिहाए के निराशा भय अनुभव को महसूस किया होगा उसके 2 बातें पुत्रों के साथ में, जब उसे बच्चे के देखते हैं, एक ऐसा एक एल्डा जो जिम्मेदारी नहीं, हमारे दिल पर तरंग हुआ जैसे लेही को ये हम पूछते, मैं किस तरह से आत्मा को महसूस और सुन में मदद कर सकता हूँ वो दुनिया के बुराइयों। 2 धर्मशास्त्र के शब्दों में दिमाग में आते हैं इस वक्त। निफाई ने ज्ञान दी, दरवाजे के चाबी दी है अपने अनुभव से। मैं निफाई परमेश्वर के वेदों को जानने के लिए मेरे बड़ी अभिलाषा थी और मैं प्रभु को पुकारा और सुनो, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और उसने मुझे हृदय को इतना दिया जैसे मैंने अपने पिता द्वारा कहा गया था। विश्वास किया, इसलिए मैं भाइयों की तरह अपने पिता के विरोध नहीं किया। इच्छा को जगाना किस चीजों को सीखने के लिए, रास्तों को ढूंढो और इच्छा को पोषण करना परिस्थितियों की जिम्मेदारी है सभी प्रचारक, माता पिता, शिक्षा नेताओं और सदस्य के लिए। जब हम उस इच्छा को अपने दिल में बनाए और को महसूस करते हैं, हम तैयारी करते हैं इस दूसरे धर्मशास्त्रों के शिक्षा के वेदों के लिए। 1831 में जब जल्द के गिरजाघर के नेताओं को नियुक्ति मिली थी, जोसेफ को बताया गया था कि शैतान पहले से धरती पर था और वो दुनिया को धोखे में रखता है। इस पूरी प्रभाव से बच्चे के लिए प्रभु ने कहा कि वो अपने सभी बेटों से जाने के लिए उदाहरण देखे कि हम धोखा नहीं करेंगे। नमूना आपस सोचा दोबारा हुआ और एक रास्ता जो शास्त्री से परमेश्वर की विचार है। प्रभु हमें आज्ञा देता है, जो लोग उनकी शक्ति में कहते हैं शक्तिशाली होंगे और बधाई और ज्ञान के फल को पाएंगे। प्रभा प्रकट होने के कार्य के अनुसार सच्चाई जो उनसे हमें दिया है। विनम्रता प्रार्थना के असरदार सभी कार्य से करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को प्रेरित करता है और मदद करता है वो जानने में जो वो जानता है। जब हम और ज्यादा स्वर्ग पिता को हमारे लिए योजना को जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने जिम्मेदारी को जानने के उसी योजना में हम मदद करते हैं दूसरों को सीखने और समझने में। दूसरों की मदद करने का तरह और याद रखना की एक तरीका और आगे अनुभव एक उदाहरण है की तरह ये मूल कार्य करते हैं। दो जवान पराचकर ने एक दरवाजे पर खटखटाया, ये आशा करते हुए कि कोई उनके संदेश को सुनेगा। दरवाजा खुला और एक बड़े आदमी ने उनका स्वागत किया और मित्र के आवाज दी, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने दरवाजे को दोबारा खटखटाने से मना किया था। मुझे तुम्हें पहले ही चेतावनी दिया है कि तुम अगर तुम कभी आए और अच्छा अनुभव नहीं था और मुझे अकेला छोड़ दो। उसने जल से दरवाजा भर गया। एल्डर्स फिर चले गए और वो बुजुर्ग ज्यादा अनुभव का प्रचारक ने अपने हाथ को जवान प्रचारक के कंधे पर रखा उसे दिलासा और हिम्मत देने के लिए। उन्हें के लिए अनजान आदमी ने उन्हें खिड़की से जाते हुए देखा और उनको उसके संदेश को समझ लिया था। वहां जाता था कि वे हंसे और उसका मजाक उड़ाए। उनका वजह जहां वाले जल को नाराजगी भेंट की जवाब में। ये है होता है जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं और उसके कार्य को जीवन में करते हैं कि उसका आत्मा को महसूस करते उद्धार करता निकल। ये आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये एक दूसरे से प्रेम का मूल्य होना और अपने है। इच्छा को जगाने और हमें तैयार करता है वादे किए हुए कार्य को पूरा करने में। तरीका को ढूंढो और मसीह के धर्मशास्त्र की ओर ले जाता है और उद्धारकर्ता और उसके भविष्यवक्ता नेताओं से सिखलाता है। धर्मशिष्टता का एक तरीका है कि अंत तक चेलो और वे लोग धन्य हैं जो उस दिन के राज्य लाने का प्रथम कार्य करेंगे। वो क्या तरीका है जिससे हम पवित्र आत्मा की उपहार और शक्ति से खुश हो सकते हैं? ये वो शक्ति है जो यीशु मसीह के विश्वासी चेले बना सकते हैं। ये हमारे प्यार है वे और हमें लोगों के लिए। उनके प्यार पुनर्जीवन का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। ये उद्धार करता है जिससे प्यार के तरीका को बतलाता था जब उसके हमें सिखलाया है। प्रधान हिंकली ने हमें सिखलाया है कि प्रभु को प्यार करना सिर्फ सलाह नहीं है, ये सिर्फ अच्छा जानना नहीं है, ये एक आज्ञा है। परमेश्वर का प्यार सभी शुद्ध सभी सच्चाइयों का सभी गुण की शक्ति का ईमानदारी सभी कुछ अच्छाई तरह शुरुआत का है। पिता की योजना ने तरीका को बनाया कि परिवार की संगठन के हमें मदद मिला सिखला सके। उस दिन मेरा परिवार संगत हुआ था। मेरा प्यारा एन और मैं मंदिर गया और शादी के धर्मशास्त्रों से जोड़ा। कितना मैं सोचा था कि उस दिन मैं उसे प्यार करता हूँ, मगर मैंने सिर्फ प्यार से दृष्टि को देखने के शुरुआत किया था। जब हमारे हर एक बच्चों और नाती पोतों हमारे जीवन में आ रहे थे, हमारा प्यार उन सब के लिए भरा भर था। ऐसा लगा कि सभी अंत नहीं हुआ, प्यार की बढ़ती हुई क्षमता है। हमारा स्वर्ग के पिता से के एहसास करा कि स्वर्ग के खींच चले हैं। जब हम उन भाई बुराइयों को दूर करते हैं जो ये उसी तरह से प्यार है जिसे द्वारा एल्मा ने एक संगीत गाया था, मुक्ति दया प्रेम की गीत है। उन्हें मोमन को तरह से हमें सलाह दिया कि प्रार्थना हृदय से संपूर्ण शक्ति द्वारा इस है। दोनों नए और पुराने धर्मशास्त्र स्वर्ग पिता के आनंद प्रेम के यादों से साथ भरे हुए हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि स्वर्ग के बनने हुए परिवार की तरीका से हम और ज्यादा समझते हैं कि तरह हमारे स्वर्ग पिता हम सबको एक सम्मान और पूरी तरह से प्रेम करता है। मैं गवाही देता हूँ कि ये सच्चा है। परमेश्वर हमें जानता है और प्रेम करता है। उसने हमें अपना पवित्र स्थान का दृष्टि दिया है और भविष्यवक्ताओं और नेताओं को नियुक्त किया है मूल और तरीकों को सिखलाने के लिए जो हमें उसे पास वापस करता है तरीका, और हम उसके नजर घिस चले जाएंगे। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु पर पुत्र है हमारे उद्धारकर्ता और प्यारे मुक्तिदाता, जो मैं यीशु मसीह के नाम से आमीन।
The atoning sacrifice of Jesus.
यीशु मसीह के बलिदान के प्रायश्चित को सृष्टि के शुरुआत से आनंद तक के कार्य में से सबसे महान कहा जाता है कि सभी भविष्यवक्ताओं का मुख्य संदेश बलिदान है। ये जानवरों के बलिदान से दिखाया गया था जब मोसेस के नियम के अनुसार एक भविष्यवक्ता ने बताया कि नियम का संपूर्ण अर्थ इसी की और इशारा करता है कि वो परमेश्वर के पुत्र महान अंतिम बलिदान होगा जो कि असीम और अनंत है। यीशु मसीह ने अंत तक मुसीबतों को झेला अपने आप को सभी लोगों के लिए बलिदान करने के लिए। वो बलिदान ने अंतिम अच्छाई को भेद दिया, निर्दोष मेमना बुराई के महान कीमत के लिए, दुनिया भर की पापों के लिए। एलाइजा आर्शनो के यादगार शब्दों में अपने अनमोल खून को बहाया, अपने जिंदगी को दिया, एक पापराहित बलिदान कसूर के लिए, एक मरते हुए दुनिया को बचाने के लिए। वो बलिदान यीशु मसीह का प्रायश्चित मुक्ति के योजना का मुख्य भाग है। यीशु मसीह के अनचिंत झरने को खून को बहने के बलिदान के से खत्म किया गया, मगर उसने सुसमाचार के योजना में बलिदान को जरूरत को खत्म नहीं किया। हमारे उद्धारकर्ता हमें आज भी बलिदान देने को कहता है, मगर जो बलिदान वह आज चाहता है कि हम उसे निराश हृदय और एक शोकर्त आत्मा की बलि दिया करें। वह हम सबको आज्ञा देता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और सेवा में रहें, ताकि हम उसके बलिदान जैसा छोटा बलिदान देने अपने समय और खुदगर्जी के कार्य को त्याग कर। एक प्रेरणा भरे गीत में हम गाते हैं, बलिदान स्वर्ग के आशीर्वाद लाता है। मैं उन मरणशील बलिदानों पर बातें करूंगा जो हमारे उद्धारकर्ता चाहता है कि हम बनाएं। इसमें बलिदान जो हमें बनाने हैं या करने हैं नहीं शामिल होगा, जो आत्मिक फायदे के लिए होगा, ना कि सेवा या बलिदान। ईसाई धर्म में बलिदान का इतिहास है, महान बलिदान भी। ईसाई युग के पहले सालों में रोमन में हजारों को मार दिया गया यीशु मसीह में विश्वास के करने के कारण। बाद में वर्षों में ईसाइयों को धर्मशास्त्र के विवाद ने अलग किया दिया था कि जो संगत विरोधी को हो गया और दूसरी संगतों के लोगों को मारने लगे। ईसाई विश्वासी दूसरे ईसाई द्वारा मारे गए थे, जो एक बहुत बड़ी विषय की ईसाई धर्म के लिए। कई ईसाइयों ने मुफ्त में बलिदान को दिया और मसीह के विश्वास में थे और उसी सेवा करना चाहते थे। कुछ ने तो अपनी पूरी जीवन को स्वामी के सेवा में लगा दिया था। इस महान संगठनों में कैथोलिक गिरजाघर के धार्मिक संगठनों में भी शामिल थी, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईसाइयों की प्रचार की तरह से सेवा किया और दूसरे विरोधी धर्म के लिए। उनके चुनौतियों और प्रेरणा से भरे उदाहरण है, मगर मसीह की कई विश्वासियों को अपनी पूरी तरह जिंदगी को धर्म से सेवा के लिए बिताना नहीं पड़ता। मसीह के कई चेलों के लिए हमारे बलिदान में शामिल है। हम क्या कर सकते हैं और हमारे मामूली व्यक्तिगत जिंदगी में है हर दिन। उस अनुभव में मैं किसी भी संगतों को नहीं जानता जिनके सदस्य अंतिम दिनों के संतों के से भी ज्यादा बलिदान करते हैं। उनके बलिदान, तुम्हारे बलिदान, मेरे भाई और बहनों विरोधी में है दुनिया के जानने मानने व्यक्तिगत पूर्ति के तलाश में। मेरे पहले उदाहरण है मोर्मन के पूर्वज। उनके जिंदगी के बलिदान, परिवार के रिश्तेदारी, घरें और संतुष्टि पुनस्पतित सुषमाचार के नींव है। सारा निरेच ने उस पर बातें किया जो पूर्वजों को प्रोत्साहित करती है, जो उसने अपने पति चार्ल्स के विषय में बतलाया जो मिशन पर था। ये मेरे और मेरे पति के लिए मुश्किल था समय था, मगर काम के कारण छोड़ना पड़ा, और जानते हुए कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे, हमें अपने भावनाओं को बलिदान करने को सोचा कि कार्य को बलिदान में मदद करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को धरती पर बनाने के लिए। आज यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिन के संतों का सबसे दिखने वाला शक्ति है, और उनके सदस्यों का बिना खुदगर्जी के सेवा और बलिदान। हमारे एक मंदिर के समर्पण पर एक ईसाई पादरी ने प्रधान कोर्ट विंसली से पूछा कि क्यों क्रूस को दिखलाया नहीं गया था इमारत पर, जो ईसाई धर्म का सबसे सामान्य चीज है। प्रधान विंसली ने जवाब दिया कि हमारे ईसाई धर्म का चिन्ह हमारे लोगों की जिंदगी है। वास्तव में हमारे सेवा और बलिदान की जिंदगी वही है जो दिखलाती है कि हम ही किस तरह स्वामी और बंधुओं की सेवा करते हैं। हमारे पास यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का में भी कोई भी पेशवर रूप में सिखलाया गया है। कोई पैसे लेने वाला पादरी नहीं है। परिणाम में वो सदस्य है जो हमारी जिंदगी हमारी संगठन में चुने गए हैं और नेता और सेवा करते हैं। ये सब 14,000 से ज्यादा सभाओं में करते हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में। बिल्कुल हम कोई खास नहीं है सभों के सदस्य को शिक्षक और नेता की तरह सेवा करने के, मगर हमारे सदस्य की सिखलाने और एक दूसरे के देखरेख के समय में बताते हैं वो बात बहुत है। हमारे कोशिश है कि हम अपने सभा के हर एक परिवार को घरेलू शिक्षण दे हर महीने, और एक महिला को सहायक करते। हम दुनिया भर में भर के किसी भी संस्था को नहीं जानते जो इस सेवा के बराबर हैं। एलडीएस सेवा और बलिदान का सबसे परिषद उदाहरण है। हमारे प्रचार के कार्य अभी 50,000 से ज्यादा जवान आदमी है और जवान महिला है, 5,000 बड़े आदमी और महिला गिनती में। वो अपने जीवन का 6 महीने से ज्यादा 2 साल तक बलिदान करते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार को बढ़ाने में बिता देते हैं। 160 देशों में ह्यूमैनिटेरियन सेवा करते हैं। उनके कार्य में हमेशा बलिदान होता है। प्रभु के कार्य जो सालों तक साथ में लेकर, और वह बलिदान जो वे अपने खर्चे के लिए प्रदान करते हैं। जो घर पर रहते हैं माता पिताओं और दूसरे परिवार के दूसरों भर सदस्यों भी बलिदान देते हैं अपने मृतव में, और उन प्रचार की सेवा से जिनते उसने भेजा था। उदाहरण में एक जवान ब्राजीलियन ने प्रचारक ने नियुक्ति का जवाब पाया जब वह काम कर रहा था अपने भाई और बहनों को पालने के लिए जब उसके पिता और माता पिता मर चुके थे. एक महान अध्यक्षता ने इन बच्चों के विषय में एक बैठक में बताया और कहा कि उन्हें याद था कि उसके मरे हुए पिता ने उन्हें सिखलाया था कि वो कैसे हमेशा प्रभु की सेवा करें. हमें ज़्यादातर पूछा गया है कि तुम किस तरह अपने युवा लोगों को, बड़े सदस्यों को, पाठशाला को छोड़ने या उनके अवकाश प्रति को इस तरह बलिदान करने में राजी कर लेते हो. मैंने कईयों को ये जवाब देते हुए सुना है, ये जानते हुए कि मेरे उद्धारकर्ता ने मेरे लिए क्या किया था, उसके उपकार मेरे पापों को झेलने के लिए और मृत्यु से विजय पाने ताकि मैं फिर जीवन का पा सकूं. मुझे अच्छा महसूस होता है कि इस छोटे से बलिदान से लिए मुझे उसके सेवा में करने के को कहा गया है. मैं उस ज्ञान को बांटना चाहता हूँ जो उसने मेरे लिए दिया है. अन्य बलिदान जो प्रचारक की सेवा को परिणाम है वह है उनके बलिदान जो प्रचारक को शिक्षण पर कार्य को करते हैं और गिरजाघर के सदस्य बनते हैं. कई धर्म बदले हुए के लिए ये बलिदान होते महत्व रखता है, दोनों और पवित्र रिश्तों को खोने के जिसका जैसा. कई साल पहले एक सम्मेलन के लोगों ने एक जवान आदमी के बारे में सुना जिसने पुनर्स्थापित सुषमाचार को सुना था. वो जब यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रहा था, जब वह अपने देश वापस जा रहा था, प्रधान गोर्डन भिंकले ने उससे पूछा कि क्या होगा जब वह ईसाई बनकर घर वापस लौटेगा, मेरे परिवार पसंद नहीं करेंगे. जवाब आदमी ने दिया, वो मुझे शायद बाहर निकाल दिया गया, मेरे आगे जिंदगी और नौकरी के लिए अवसर शायद नहीं होगा. क्या तुम इस सुषमाचार के लिए इतनी बड़ी कीमत दोगे, प्रधान हिंकले ने कहा. रोते हुए उसने जवाब दिया, या सही है. जब वह साबित हुआ है, उसने जवाब दिया, फिर और किसी बात का क्या मतलब हो सकता है. दूसरे विश्वास सदस्य की जिंदगी में सेवा और बलिदान के उदाहरण दिखते हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं. मंदिर के सेवा अंतिम दिन के संतों के लिए अनुक है. अंतिम दिन के संतों के पास सेवा की परंपरा नहीं है मंदिर में, मगर फिर भी हम इसके बलिदान को समझ और इज्जत दे सकते हैं जिनके ईसाई धर्म उन्हें आगे बढ़ते हुए अपने जिंदगी को धार्मिक गतिविधियों में शामिल करते हैं. इस सम्मेलन में मैं एक साल पहले प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन ने बलिदान के उदाहरण को बतलाया जो मंदिर की सेवा के साथ जुड़ी हुई है. एक विश्वासी अंतिम दिन संत पिता ने पैसिफिक में एक छोटे से द्वीप पर बहुत ही मेहनत के कार्य को 6 सालों तक दूर स्थान पर किया ताकि वो अपने पत्नी और परिवार को मंदिर ले जा सके, न्यूजीलैंड टेम्पल पर. प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन ने बताया, वो जो अंत आशीर्वाद को जानते हैं मंदिर से आती है, जानते हैं कि कोई बलिदान महान नहीं है और कोई भी कीमत बड़ी नहीं है इस मंदिर से ज्यादा. मैं आभारी हूँ ईसाइयों के महान प्यार, सेवा और बलिदान के उदाहरण के लिए जो मैंने अंतिम दिन के संतों में देखा है. मैंने तुम्हें तुम्हारे गिरजाघर के नियुक्तियों को करते हुए देखा है, कई बार महान समय और पैसे और चीज़ों को बलिदान. मैंने तुम्हें अपने खर्च पर मिशन की सेवा करते हुए देखा है. मैंने तुम्हें खुशी और से अपने खास गुणों को लोगों के सेवा में बांटते हुए देखा है. यह सब दुनिया भर का सीखने के लिए वचन मिला है. सोचे कि यीशु मसीह का गिरजाघर का संतों के सक्रिय है सदस्य वॉलंटियर और दान देने है. अमेरिकन सामान्य अर्थ ज्यादा अधिकार के समय और पैसे ऊपर अपने अमेरिकन के धार्मिक लोगों के लिए. ये उदाहरण हम सबको मजबूत करती है। वे हमें उद्धारकर्ता के शिक्षण को याद दिलाता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्रेम खोएगा वो उसे पाएगा। शायद सबसे जानकार और सबसे जरूरी निस्वार्थ सेवा और बलिदान का उदाहरण हमारे घरों में किया जाता है। माताएं अपने आप को बच्चों को पैदा और पालन पोषण में गुजार देती है। पिता अपने पत्नी और पुत्रों की देखभाल में मदद करते हैं। वो बलिदान जो हमारे पवित्र परिवारों के अंत तक के सेवा में है शामिल होने के लिए जरूरी है। मैंने निस्वार्थी अंतिम दिन के संतों को बच्चों को गोद लेते हुए देखा है, उनके साथ जिनके खास जरूरती है, और ढूंढते हैं बच्चों को जो जिन्हें कानूनी ढंग से अपना सके और देखभाल कर सके। मैं तुम्हें परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को मदद करते हुए देखता हूँ जो पैदाइश से बीमार है, दिमागी और शारीरिक तौर से बीमार और बूढ़ेपन की मुसीबतों से। मैं विश्वास करता हूँ कि अंतिम दिन के संत जो निवर्ती सेवा और उद्धारकर्ता की सेवा करते हैं, उसके उदाहरण को करते हैं हुए आनंद मुल्क को और ज्यादा आगे बढ़ते हैं किसी भी दूसरे संगतों के लोगों के मिलन के लिए। में अंतिम दिन के संत अपने समय और कार्य के बलिदान को अपने पाठशाला और आनंद तक जाने के लिए का भाग समझते हैं। ये एक सच्चाई है जो लेक्चर्स ऑन फेथ में पुनर्स्थापित हुआ है, जो सिखलाता है वो धर्म जो सभी चीजों के बलिदान को नहीं चाहती, उसके पास कभी इतनी शक्ति नहीं होती है उस विश्वास को पैदा करके कर सके जो जरूरी है जिंदगी और मुक्ति के लिए। जिस तरह यीशु मसीह का प्रायश्चित का बलिदान मुक्ति की योजना में मुख्य है, उसी मसीह के चेले अपने खुद के बलिदान को करें ताकि वो हासिल करें जो योजना में है। मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह ही आनंद पिता और एकलौता पुत्र है। मैं जानता हूँ कि उसके प्रायश्चित के बलिदान के कारण हमें अमरशीलता प्राप्त हुआ है और आनंद जीवन के अवसर भी। वो हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे मुक्तिदाता है। और मैं उसकी गवाही यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। आमीन।
We are indeed grateful to the
Tabernacle Gayak Mandali aur unke sanchalan karta hai aur organist ke liye aabhari hai unke aaj sabha ke sundar sangeet ke liye hamara antim bhashan karta is baithak ke liye hoga pradhan Henry B. Iron pradhan pratham sakshya adhyaksh sakta ke pehle sarakar pradhan Iron ke tipaniyon ke baad Gayak Mandali sabha ki samapti karegi redeema festival gaakar prarthna फिर एल्डर वुल्फर्ड डब्ल्यू एंडरसन सत्तर के द्वारा दिया जाएगा प्रेजेंट आयरिंग मैंने सीधा प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू कैम्बल को एक सम्मेलन के सभा में परमेश्वर से मांगते हुए कि उसे पहाड़ दे चढ़ने के लिए उसने कहा वहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हमारे आगे है बड़ी अवसर सारे आने को मैं स्वागत करता हूँ उस उचित आशा की और ये कहना चाहता हूँ प्रभु से विनम्र से मुझे पहाड़ दो मुझे है चुनौतियाँ दो मेरे दिल में प्रेरणा मिलती है जानते हुए जैसे मैंने किया कुछ चुनौतियों और परीक्षा को उसने पहले के झेला था मैंने इच्छा महसूस किया उसकी तरह बनने में परमेश्वर के एक बहादुर सेवक बनने के लिए कुछ समय के बाद एक रात मैंने परीक्षा की लिए प्रार्थना किया अपने हिम्मत को जानने के लिए मैं स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ रात को मैं अपने कमरे में घुटने पर हुए विश्वास के साथ जो ऐसा लगा कि मेरे दिल फटने ही वाला था एक या दो दिन में मेरा प्रार्थना का जवाब मिल गया था सबसे बड़ा परीक्षा मेरे जीवन के ने मुझे हैरान और विनम्र किया उसने मुझे दो बाग का पथ दिया पहले मेरा पास साफ बहुत था कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना और जवाब दिया मगर दूसरा मैंने पास शुरू किया जो आज भी मैं सीख रहा हूँ ये जानने के लिए कि क्यों मैंने उस रात को उस तरह की साहस को महसूस किया ताकि एक महान आशीर्वाद परीक्षा से मिल सकता है जो किसी भी खर्चे से बड़ा था वो परीक्षा जिसने मुझे अनुभव दिया है दिन पहले आप छोटे लगते हैं उसके मिलान में जो अभी भी मेरे लिए और उनके जिन्हें मैं प्यार करता हूँ तो मैं से कई शारीरिक मानसिक और गंभीर परीक्षा को अभी झेल रहे हो जो तुम्हें रोना को कर सकता है जिस तरह के महान और विश्वास परमेश्वर के सेवक ने किया था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसका नर्स के उसके खाट पर से चिल्लाते हुए सुना जहाँ वो पीड़ा महसूस कर रहा था जब मैंने अपने पूरे जीवन में अच्छे करने की कोशिश की किया था ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ तुम जानते हो कि प्रभु ने उसे सवाल जोसेफ स्मिथ को किया दिया और अगर उसे गड्ढे में फेंका गया या खूनियों का हाथों में दिया गया और मौत की साजा हुई अगर उसे शायद गहरे पानी में फेंका गया और लहरों उसे खींच ले गया अगर गंभीर हवाएं उसकी दुश्मन हुई स्वर्ग अंधेरी हो जाए और सभी चीजें साथ में हो जाए रास्ता रोकने के लिए और फिर अगर नरक का दरवाजा उसके लिए खुल जाए उसका जानना चाहिए कि सभी चीजों उसे अनुभव देगा और उसके अच्छा के लिए होगा प्रभु ने कहा कि इंसान के पुत्र उन्हें इच्छे छोड़ आई है क्या जोसेफ ने उनसे महान था प्रभु ने कहा कि रास्ता पर रुक जाओ और पुरोहित तो उसके साथ होना चाहिए क्योंकि उनके धैर्य बना लिया गया है वे गुजर नहीं सकेगा जोसेफ ने दिनों को जाना गया और उसके सालों को कोई कम नहीं गंती की गई उसे वो डरना नहीं परमेश्वर उनके साथ होगा हमेशा वहां पर और कोई भी अच्छा जवाब नहीं था कि कोई कि क्यों परीक्षा आती है और हमें क्या करना है. खुद प्रभु के वाणी से जो परीक्षा से गुजरा हमारे लिए जो बहुत ही गंभीरता जो हम सोच नहीं सकते थे. तुम उसके वाणी को याद करो जब उसे सलाह दिया था कि हमें उसमें विश्वास से पश्चाताप करें. इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पश्चाताप करो या मैं अपने वाणी के तलवार से मारूंगा और मेरे गुस्से और मेरे क्रोध से और तुम्हारा जलना पीड़ित होगा. कितना पीड़ेदार तुम नहीं जानते, कितना मुश्किल होगा सुनना तुम ना जान सकते. उदारकर्ता ने कहा कि उसने चीजों को जला है ताकि वो नहीं जल अगर वह पश्चाताप करे. उदारकर्ता ने कहा कि अगर वो पश्चाताप ना करे तो वैसे ही तरह जले से तरह उसने जलने से उसने परमेश्वर को भी सभी से महान गिनना. पीड़े का कारण सभी छेड़ से खून निकलेगा और दोनों शरीर और आत्मा जलेंगे. कुछ भी कम नहीं. उसने पिता की महिमा किया. उसने जला और खत्म किया अपने तैयारी के हमारे लिए. तुम्हारे और मेरे पास विश्वास है जैसे आग आगे बढ़ते सकते हैं और सभी मुसीबतों जैसे विश्वास को की हो कि वहाँ पर गिलियत माहम है मिले. और प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुझे धोखा नहीं. वो यह है जो प्रधान थॉमस मंसर ने सिखलाया है. मगर प्रधान मंसर ने ये भी सिखलाया है कि विश्वास की उस सच्चाई के नींव उन वादों का समय लगता है बनने के. तुम्हें उस नींव को जरूरत का देख होगा. किसी के खाट के पास झगड़े को भूलते हुए उनकी मदद करने अंत तक साथ देने में अगर विश्वास की नींव हमारे दिल का भाग नहीं अंत तक की शक्ति मर जाएगा. मेरा महत्व आज है कि बतलाऊं कि मैं क्या जानता हूं हम बनने सकते हैं ताकि नींव हिल ना सके. मैं महान दो विनम्रता के कारण के साथ करता हूं. पहला जो मैं कहूंगा कुछ को हिम्मत ना देगा जो बड़े परीक्षा को बीच में झेल रहे होंगे और वे महसूस करें कि उनके विश्वास की नींव गिर रहे हैं. और दूसरा मैं जानता हूं कि उसे बड़ा परीक्षा में आगे आए जीवन से पहले वो आदेश में तुम्हें देता हूं जो अभी पूरा नहीं हुआ है मेरे अंत के तक लिए. एक जवान आदमी के तरह मैंने घर बनाने वाले के साथ काम किया था फुटिंग्स और नींव के नए घर के लिए बनाते हुए. गांव के गर्मी में कठिनता काम करना धरती के तैयार करने के लिए उस मार्ग के लिए जिसमें हमने सीमेंट डाला फुटिंग के लिए. वहां पर कोई साधन नहीं था. हमें चुना और सबल का इस्तेमाल किया था उस नींव के बनाते हुए जो अंत तक साथ देगा. घरों को बनाना मुश्किल कार्य. उसने धैर्य की जरूरत की. हम चाहते थे कि कार्य आगे बढ़ते थे. हमें नींव में करने के बाद भी इंतजार किया था और भी ज्यादा आगे बढ़ने का कार्य था घर बनाने वाला के शुरुआत के लिए जो लगा कि कठिन और समय लगाने वाले कार्य प्रकार में लोहे की छड़ी को रखना नींव के शक्ति को खत्म करने के लिए. उसी तरह के तरीके से हमारे विश्वास के नींव के लिए धरती को अच्छी तरह से तैयार करना विश्वास के नींव के लिए खड़ी शुरुआत की जरूरत है. व्यक्तिगत सच्चाई से हमेशा सही को चुनने से सभी कभी कभी हमारे आगे चुनाने होता है. हमारे विश्वास के नीचे खड़ी धरती को हम बना सकते हैं. यह बचपन में शुरू हो सकती है जबकि सभी आत्मा जो पैदा होती है को मुफ्त में मसीह के आत्मा का उपहार मिलता है. उस आत्मा से हम जान सकते हैं कि हम सही क्या है परमेश्वर के सामने, और जब हमने बुरा किया उसकी नज़र में, उस चुनाव जो कई दिनों में सो बाहर होता है, खड़े धरती के तैयार करके जिसमें हम विश्वास की घर को बना सकें, लोहे की मदद की जिस खेरित गिर विश्वास को भरा गया हो, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है बादों धर्म सिद्धांतों और मुख्य साथ अंत के विश्वास के एक चाबियों है कि सच सही चिन्ह और समय और जो जरूरी है उसका खड़ा और ठीक होने के लिए, ये वो कारण है कि मैं प्रार्थना करने के लिए मूर्खता इतनी जल्द मेरे जीवन में ऊंची पहाड़ों और चढ़ने के लिए। संसाधन खुद समय के साथ नहीं आता, मगर वहाँ समय लगता है। बूढ़ा होने अकेले नहीं होता, ये परमेश्वर और दूसरों की सेवा हमेशा पूरे दिल और आत्मा के से करने से मिलता है। अब मैं उन्हें शक्ति देना चाहता हूँ जो मुसीबतों के बीच में है। वो मुसीबत महसूस करते हैं कि विश्वास जग रही है मुसीबतों के दबाव से। परीक्षा खुद ही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। शक्ति का और कभी ना टूटने वाली विश्वास होती है। मरोना ने हमें बतलाया कि किस तरह वो अताल आशीर्वाद मिल सकता है। वो साधारण और सच्चे सच्चाई को सिखलाती है सिर्फ विश्वास की डाली से। परमेश्वर स्वीकार करते हैं बढ़ने में। अब मैं मरोना इन बातों को विषय में कुछ कहूँगा। विश्वास ऐसा चीज है जिसकी आशा की जाती है, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए अगर वो दिखाई नहीं देता तब उस पर संदेह मत करो, क्योंकि इसके लिए तुम्हें तब तक साक्षी नहीं मिल सकती जब तक कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ना हो जाए। मर्द होकर जीने उठने के पश्चात विश्वास के कर्म में मसीह ने हमारे पूर्ण जीवन को दर्शन दिया था, परंतु लोगों ने विश्वास के कारण ही उसने अपने आप को जगत को दिखाया और पिता के नाम को गौरवान्वित किया। इसलिए तुम भी आशा करो, और अगर तुम्हें विश्वास किया तब तुम भी उस उपहार के हिस्सेदार हो जाओगे। विश्वास का छोटा सा अंश बहुत ही अनमोल है, और वो तुम्हें बचना और इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी तरीके से जो तुम कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से। मरोना ने विश्वास के शक्ति को इस तरह बतलाया, और विश्वास से पहले कोई भी चमत्कार का काम नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने पहले परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया। मैंने एक महिला के संग भेंट किया जिन्होंने पर्याप्त शक्ति के चमत्कार को पाया था न सोचने नुकसान को अंत तक झेलने के लिए। साधारण क्षमता के साथ शब्दों के दोहराती रही, मैं जानती हूँ कि मुक्तिदाता जीवित है। मुझे हैरान हुआ है सीखते हुए कि दूसरी महिला ने एक दूसरे को क्षमा किया था जिसने उसके साथ गलत किया था कई सालों में। मैं अचंभे में था और उसे पूछा किया क्यों उसने उसे क्षमा करने को सोचा था, और कई सालों के दोषी के गाली को भूल गई थी। उसने धीरे से कहा, यह सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने कभी कही है किया है। मुझे पता था कि मुझे करना है, सो मैंने किया। उसके विश्वास थी कि उधारकर्ता उसे माफ कर देगा अगर उसने दूसरों को माफ किया। शांति की महसूस से और आशा करती है कि तैयारी से कि जब वह कुछ नहीं महीनों बाद गुजर गई थी अपने पश्चाताप न करने वाले दुश्मन को माफ करने के बाद। मेरे पास एक और हिम्मत है जो मैं उनको देना चाहता हूँ जो जानना चाहते हैं कि उनकी यीशु मसीह में विश्वास इतना होगा कि वे अंत तक जल सकेंगे। तुम में से कुछ जो अभी सुन रहे हो, तब तुम जवान थे को सुनकर मुझे आशीर्वाद शक्ति ज़्यादा उपहार मिली है तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं से। फिर भी तुम्हें वो जानना जो उधारकर्ता ने किया होता। तुम्हारे कई आशीर्वादों महीने से तुम्हें तरीकों को पाया मदद और देख रेख करने के लिए जिन्हें तुम्हें अनदेखा या बुरी नज़र से देखा होगा अपने जीवन में। जब बड़ी परेशानी आती है, अंत तक के लिए विश्वास वहाँ रहेगा। तुम्हें भी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, मगर यह बनना था मसीह के सच्चा प्यार पर कार्य करने से, सेवा और माफ करना जिस तरह उधारकर्ता ने किया होता। तुम अपने विश्वास के नींव को उस तरह बनाओ प्यार करने से जिस तरह उधारकर्ता ने किया होता। तुम अपने विश्वास के नींव को उस तरह बनाओ प्यार करने से जिस तरह उधारकर्ता ने प्यार किया। कभी देर नहीं हुई है विश्वास के नींव को मजबूत करने के लिए। वहाँ पर हमेशा समय है। उधारकर्ता में विश्वास कर सकता है, तुम पश्चाताप कर सकते हो। वहाँ पर कोई यही जैसे तुम माफ़ कर सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, जहाँ कहीं पर हो और कितने भी अकेले हो और वीरान तुम महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे कठिनाई के लिए अंत नहीं वादा कर सकता। मैं तुम्हें यह बतला नहीं सकती कि तुम्हारे परीक्षा कुछ किसान के लिए होगा। जीवन के परीक्षा के एक अभिलाषण है कि वो हमारे समय के अनुसार धीमी होती है और फिर लगभग रुक ही जाती। उसके लिए कारण है। उन कारणों को जाने के सुख बहुत नहीं मिलता है, मगर वो तुम्हें धैर्य को महसूस हो सकते हैं। वह एक ही सच्चाई से मिलता है। उनके तुम्हारे लिए अपने सच्चाई पर प्यार स्वर्ग के पिता और उधारकर्ता तुमसे चाहता है कि तैयार रहो उनके साथ रखने के लिए प्यार परिवारों के संग सभी समय। सिर्फ वे जो यीशु मसीह के प्रसिद्ध से पूरी तरह साफ हुए है वहाँ पर रह सकते। मेरी माँ ने कैंसर 10 सालों के लिए झेला, इलाज और ऑपरेशन और अंत में कहा खट पर। मुझे याद है पर मेरे पिताजी कहते हुए जब उसने कहा मेरी सांस को लेते हुए देखा है एक छोटी सी लड़की अपने घर चली गई। उसके साथियों मेरे एक बतलाने वाले उसका एक बहन का पति था और मित्र। तुमने से कुछ नहीं सोचा होगा कि मिल्ड्रेड ने बड़ी दिनों का तक और बहुत जल होगा उसलिए जो उसने गलत किया। उसने कहा नहीं वो था कि परमेश्वर उसे ना और अच्छा बना चाहते हैं। अगर हमारे पास विश्वास है यीशु मसीह में सबसे मुसीबतों और सबसे सरल समय जीवन में आशीर्वादों हो सकते हैं। सभी स्थितियों में हम सही को चुन सकते हैं आत्मा के मार्गदर्शन से। हमारे पास यीशु मसीह के सुसमाचार है। अगर हम और अविश्वक्ताओं को हमारे साथ मुक्ति के योजना में हमारे साथ स्थान को बतलाने से हम सही आशा और शांति को महसूस करने के साथ जीवन को बिता सकते हैं। हम परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सकते हैं। उधारकर्ता ने वादा किया है कि हमारे दया और दया देवदूत रहेंगे हमारे सुनने के लिए। मैं गवाही देता हूँ कि पिता परमेश्वर जीवित है। पवित्र आत्मा ने सच्चाई को बतलाया है इस सम्मेलन में और फिर बतलाया जब तुम पर ढूंढेंगे और जब तुम बाद में प्रभु के चुने हुए सेवकों को संदेश को सिखाओगे। जो वहाँ पर है प्रधान थॉमस एस मॉनसन प्रभु के भविष्यवक्ता है सारे दुनिया भर के लिए प्रभु तुम्हारी देखभाल करता है मैं गवाही देता हूँ इसी मसीह के नाम से
In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Heavenly Father, as we conclude this
conference
of gratitude for what we have
done and for what we have done, when we have thought of it, I am a Prime Minister for the Prime Minister. उससे प्यार करते हैं और उससे सस्टेन करते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके उससे ताकत दें और उसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हर सबको आशीर्वाद दे, जैसे हम घर जाते हैं तो हम अच्छा बन सके, हम अच्छे से दूसरे की ओर मदद कर सके। हम जानते हैं कि कई आदमी और औरतें बच्चे हैं जो कुछ भी तकलीफ मानता है, मैं हम मानता करते हैं कि आप उन सबको आशीर्वाद दें।
Hasten the day when my children will live in love and unity and peace.
Peace or Jesus Christ. Amen. Amen. Jesus Christ. Amen.
This has been the first session of the 182nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.